नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमित है और आप सभी का स्वागत है संविधान लाइफ के आज़ाद बोल पॉडकास्ट में। साथियों, आज हम ऑनलाइन फ्रॉड के ऊपर बात करेंगे कि कैसे 14 से 15 साल के बच्चों के साथ ये फ्रॉड हो रहा है। यह फ्रॉड ज़्यादातर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के थ्रू होता है, जिसमें फ्रॉड करने वाला आपको लालच देता है कि आपको कुछ 1 रुपये देने हैं और आपको बहुत सारे रुपयों का गिफ्ट कार्ड मिलेगा। ऐसा ही फ्रॉड मेरे एक दोस्त के साथ हुआ, जिस पर हम आगे भी बात करेंगे। साथियों, इसके अलावा हम बात करेंगे कि कैसे आजकल के किशोर ऑनलाइन गेम के माया जाल में फंस रहे हैं, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। आधी रात को जब सारी दुनिया नींद में होती है, तब 16 साल तक के किशोर मोबाइल के जरिए ऑनलाइन गेम खेलने में मशगूल रहते हैं हो जाते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर के किशोर रात को ऑनलाइन होकर एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। इन किशोरों को सिर्फ रैंकिंग चाहिए। गेम का मकड़ चाल उन्हें इस कदर अपनी गिरफ्त में ले रहा है कि कई तो बीमार होने लगे हैं। अमृतसर में 2 निजी अस्पतालों में ऑनलाइन गेमिंग की लत का शिकार 3 किशोर रिपोर्ट हुए। ये तीनों ही पबजी नामक ऑनलाइन गेम खेलते थे। इनमें से 2 किशोर ऐसे हैं जो रात 10 बजे बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ये दिखावा करते थे कि वे सो गए हैं। रात 12 बजे जब परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में होते थे, तो मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने लगते। इनका ही एक मकसद था कि अपने कॉम्पिटिटर को मात देकर अधिक रैंकिंग हासिल कर सकें। ऑनलाइन गेम में एट्रैक्टिव ग्राफिक्स, पावरफुल साउंड और मोशन सेंसरिंग टेक्नोलॉजी यूजर्स को अपनी ओर आकर्षित करती है। पबजी गेम की लत इतनी बढ़ चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा चुका है कि यह गेम अब तक 20 करोड़ से भी ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। इसके लिए कई किशोर तो रात को 12 बजे से लेकर सुबह के 4-4, 5-5 बजे तक इसमें उलझे रहते हैं। आइए तो बात करते हैं कि कैसे मेरे मित्र के साथ ये फ्रॉड हुआ।
सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राम है। 7 जुलाई को मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आता है कि आपको 500 रुपये देने हैं और आपको 3,000 का पेटीएम का गिफ्ट कार्ड मिलेगा।
तो क्या आपको उससे बातचीत करते समय ये नहीं लगा कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए?
शुरुआत में तो मुझे लगा, लेकिन फिर फ्रॉड करने वाले ने मुझे कई नकली प्रूफ दिखाए, जिससे उस पर मेरा विश्वास और बढ़ गया। और उसके बाद मैंने उसको पेमेंट कर दिया, और पेमेंट करने के बाद उसने मुझे एक एक्सपायर्ड गिफ्ट कार्ड दिया जो कि वर्किंग नहीं था। उसके बाद मैंने उससे बोला तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया।
अच्छा, तो जैसा कि हमने सुना कि इनके साथ ये फ्रॉड हो गया है, तो क्या आपने इसकी कंप्लेंट साइबर सेल या नॉर्मल जो पुलिस थाना होता है, इन सब में आपने इसकी कंप्लेंट की?
मुझे इस बात का डर लगता था कि कहीं ये खबर मेरे पेरेंट्स तक ना पहुंच जाए, इसलिए मैंने इसकी कंप्लेंट साइबर सेल में या कहीं भी नहीं की।
जी, तो साथियों, जैसा कि आपने सुना कि कैसे एक युवा के साथ ये फ्रॉड किया गया। साथियों, इसके बाद हम बात करेंगे गौरव सिंह से, जिसमें वे आप सभी को बताएंगे कि कैसे छोटे बच्चे या युवा कैसे ऑनलाइन गेम की गिरफ्त में आ रहे हैं।
नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह। आज का हमारा विषय वह चीज़ है जिसने भारत में अपने प्रवेश करने के पहले ही हफ्ते में 3.5 करोड़ से अधिक उपभोक्ता प्राप्त कर लिए, 3 करोड़ से अधिक मुनाफा कमाया प्रतिदिन, इसने 5 करोड़ से अधिक बच्चों को गुलाम बना लिया। मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन गेम्स की। ऐसा क्या है इन ऑनलाइन गेम्स में जिनके अधीन होते जा रहे हैं बच्चे, बच्चों पे इनका क्या असर पड़ता है? कुछ ऐसे ही गंभीर सवालों का जवाब जानते हैं। इन सभी ऑनलाइन गेमों का एक प्रमुख हथियार है, वो है जिज्ञासा। कोई भी बच्चा अगर कोई भी गेम चालू करता है, तो वो गेम उसके मन में एक कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा उत्पन्न कर देता है, और उसका दिमाग उस बच्चे से बार बार पूछता है कि मैंने पहला पड़ाव तो पार कर लिया, दूसरे पड़ाव में क्या होगा? इसी तरह दूसरा पड़ाव पार करने के बाद एक और पड़ाव और एक और पड़ाव, ऐसे ही जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती है और लगातार अपनी वास्तविक जिंदगी को नजरअंदाज करते हुए बच्चे इन्हीं ऑनलाइन गेमों में अपना आधे से ज़्यादा समय व्यतीत कर देते हैं। वहीं इन ऑनलाइन गेमों ने बच्चों के दिनचर्या में एक मजबूत पकड़ बना ली है। बच्चों की मासूमियत का फायदा उठा के कई अपराधी इन्हीं ऑनलाइन गेमों के जरिए, जहां वो बच्चों से सीधा और पूर्ण रूप से गुप्त संपर्क बना सकते हैं, बच्चों से उनके परिवार कई अहम जानकारियां प्राप्त कर उन्हें आर्थिक एवं मानसिक चोटों से परिवार को जूझना पड़ता है। जैसा कि अभी भली बात ही जानते हैं कि अधिक गेम खेलने वाले बच्चे शारीरिक मेहनत से अक्सर कतराते हैं। शारीरिक मेहनत की कमी और अनियमित रूप से खान पान के वजह से बच्चों को कमी उम्र में मोटापे से जूझना पड़ता है। लगातार किसी स्क्रीन में आंखें गड़ाए रखने से कई बच्चों की आंखें पूर्ण रूप से कमज़ोर हो जाती हैं, या फिर उन्हें चश्मों का सहारा लेना पड़ जाता है। और अब अगर मैं गेमिंग के मानसिक प्रभाव के बारे में बात करूं तो कई नामचीन साइंटिस्टों ने अपने अपने संदर्भ में यह प्रस्तुत किया है कि गेम खेलने वाले व्यक्ति कई बार गेम और असल ज़िंदगी में फ़र्क भूल जाते हैं, जिससे कि उनकी असल ज़िंदगी में क्रोध और आक्रोश जगह बना लेता है। ऑनलाइन गेम की दुनिया इंसानों को अपने लोभ में इस तरह जकड़ लेती है कि कई बच्चे बिना इन गेमों को खेले अपने दिन की शुरुआत तक नहीं करते हैं। और यहाँ आता है अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हथियार इन ऑनलाइन गेमों का, एडिक्शन यानी कि लत। इन ऑनलाइन गेमों की लत बच्चों को इस हद तक मजबूर कर देती है कि बच्चे दिन दिन भर किसी अजनबी के साथ अपना सारा समय खर्च कर देते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा की जाए तो वो ना आपको और ना ही आपके चाहने वालों को कभी खुशी देगी।
आइए साथियों, तो आप सुनते हैं औरंगजेब जी की बात।
ऑनलाइन फ्रॉड की बात अगर आप करेंगे तो ऑनलाइन फ्रॉड में बहुत सारे तरह के फ्रॉड हैं, जिसमें से दो तीन फ्रॉड जो हैं जो मेरे नज़रों के सामने गुजरा है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वो है कि सोशल मीडिया पे ज़्यादातर ये फ्रॉड्स होते हैं दो तीन तरह से। एक तो प्रोडक्ट्स के एतबार से भी होता है कि आपसे पैसे ले लिए, हमारे दोस्त के साथ हुआ कि आपसे पैसे ले लिए किसी प्रोडक्ट के, वो प्रोडक्ट जो दिखाया वो नहीं भेजा, कोई और भेजा, बाद में उसको ब्लॉक कर दिया गया। अब और फ़ोन वोन तो खैर दिया ही नहीं था, वो सारा काम वहीं से था, ऑनलाइन ही था। तो एक तो वो हुआ। दूसरा जो फ्रॉड हुआ जो होता भी है अभी भी होता है, वो कहते हैं कि एक फिक्स अमाउंट जो है आप जमा कीजिए, आप हमारे ग्रुप के मेंबर हो गए और उसके बाद जो है आपको एक फ़िक्स अमाउंट हम जो है जुड़ने के बाद आप भी अपने दोस्तों को भी लेकर के आएंगे। एक तरह से नेटवर्किंग, जो नेटवर्किंग काम चलता था वो भी ऑनलाइन कर रहे हैं ये लोग, लेकिन फ्रॉड की तरह कि आप लेकर के आइए, हम आपको दो तीन जोड़ेंगे तो आपको हम इतने रुपए देंगे। ये दूसरा फ्रॉड। तीसरा फ्रॉड जो होता है वो जॉब को लेकर के फ्रॉड हो रहा है, और इस वक्त जो है सारे बहुत एक बड़ा तबका जो है वो जॉबलेस है, तो ये लोग फंस जाते हैं। पहले कहा जाता है कि आप 1500 रुपया या 2000 रुपया देकर रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर उनसे कहा जाता है 5-6 हज़ार रुपया दीजिएगा तो आपकी ट्रेनिंग होएगी, आपका हम वो निकलवाएंगे, इंटरव्यू निकलवाने में आपकी तैयारी करेंगे, फिर उनसे कहा जाता है कि 20-25 हज़ार रुपया दीजिए तो जॉब लगवाते हैं। तो ऐसे करके उनसे 25-30 हज़ार के करीब रुपये ले लिए जाते हैं, उसके बाद उनका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल करके ख़त्म कर दिया जाता है। अब वो करता रहे कॉल, ये कई सारे दोस्तों के साथ मेरे हुआ है।
इसके बाद हम बात करेंगे आनस अली जी से, जिसमें वे आप सभी को एक सरल भाषा में समझाएंगे कि क्यों बच्चों के साथ ही फ्रॉड किया जाता है, इसके पीछे फ्रॉड करने का मकसद क्या है।
आज के दौर में जिस तरीके से साइबर क्राइम छोटे बच्चों के साथ बढ़ रहा है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। आजकल देखने में ये आता है कि आजकल जैसे बच्चे थोड़ा सा ही बड़े होते हैं वो मोबाइल का इस्तेमाल करने लगते हैं, गेम खेलने लगते हैं और इंटरनेट और इन सब चीज़ों से जुड़े जाते हैं। ये टीनेजर की उम्र तक चलता रहता है, मगर अक्सर उन्हें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता कि सोशल मीडिया का और इस साइबर की दुनिया का क्या रूप है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसकी क्या डेप्थ है, इसके बारे में उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। और फिर उसके बाद वो कुछ ऐसे तत्वों के शिकार हो जाते हैं, कुछ ऐसे लोगों के शिकार हो जाते हैं जो जिनका मकसद उन्हें परेशान करना, उनका हैरेसमेंट करना, उनसे वसूली करना, पैसे ऐंठना और धमकी देना, इस तरह की चीज़ों में किया जाता है। और ये बड़ा देखने में आता है, कुछ दिनों पहले एक ब्लू व्हेल नाम का एक गेम बड़ा फेमस हुआ था, वो इसी तरीके का गेम था जो साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ था। तो आज के दौर में सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि इसके बारे में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है बड़े आम लेवल पर। जिस तरीके से मतलब जो एनजीओस काम करते हैं उनको भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाना चाहिए, और साथ में जो हुकूमत है उसको भी ज़िम्मेदारी निभाना चाहिए, और साइबर से जुड़ा हुई चीज़ें, साइबर क्राइम से जुड़ी हुई बातों को हमारे पाठ्यक्रम में, छोटे बच्चों के सिलेबस में इसको शामिल करना चाहिए। और जो स्कूल हैं उनके अंदर इसके ऊपर हर हफ्ते एक लेक्चर, एक प्रोग्राम इसके अवेयरनेस के तौर पर ज़रूर शुरू किए जाने चाहिए, ताकि छोटे बच्चों के जहन में ये बात घर घर जाए कि सोशल मीडिया का हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और जब भी किसी तरह का कि साइबर क्राइम की कोई घटना या कोई हादसा उनके सामने पेश आता है तो उसमें किस तरीके से इसको निपट सकते हैं।
साथियों, अब हम राय लेते हैं ईशान श्रीवास्तव की, जिसमें वे आप सभी को बताएंगे कि कैसे बच्चे गेम्स के मायाजाल में फंस रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ईशान श्रीवास्तव की बात।
जिंदाबाद साथियों, मैं ईशान और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह इन गेम परचेज किया जाता है, किस लिए किया जाता है और आखिर कौन इसे करते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों करते हैं इन गेम परचेज। किसी भी गेम में कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिन्हें अनलॉक करने के लिए आपको गेम में कुछ पैसा देते हैं, तो उसे इन गेम परचेज कहते हैं। अब आखिर कौन इन गेम परचेज को करता है, तो ये मोस्टली टीनेजर करते हैं और इनमें भी तीन तरह की कैटेगरीज होती हैं। पहली, वर्कर्स, ये ऐसे बच्चे होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और उस जॉब की अर्निंग का कुछ पार्ट ये गेम में इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड आते हैं गुड स्टूडेंट्स, ये ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के प्रति ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और उन्हीं से मनी लेकर ये इन गेम परचेज करते हैं। थर्ड आते हैं बैड स्टूडेंट्स, ये ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ अमाउंट में कुछ कुछ पैसा घर से उठाते हैं जिससे घर वालों को पता नहीं पड़ता है और उस चुराए हुए पैसे से ये इन गेम परचेज करते हैं। अब बात करते हैं किस तरह इन गेम परचेज करते हैं। इससे करने के लिए आपको किसी ऑनलाइन पेमेंट ऐप की ज़रूरत होती है। बात करें गुड स्टूडेंट्स की, तो अगर इनके पेरेंट्स इस ऐप को यूज़ नहीं करते हैं तो ये किसी और तरह से किसी और के द्वारा इस पेमेंट को करवा देते हैं। वहीं बात करें बैड स्टूडेंट्स की, तो ये किसी ऐसे दोस्त को ढूंढते हैं जो इस तरह का कोई ऐप यूज़ करता है और उसको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं, उस अमाउंट से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं ताकि ये बात उनके पेरेंट्स तक ना पहुँचे। सेम वर्कर्स भी किसी एजेंट के पास ही जाते हैं।
साथियों, इसके बाद हम बात करेंगे नवीन जी से, जिसमें वे बताएंगे कि कैसे फ्रॉड होने पर कैसे हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। आइए नवीन जी से इस बारे में हम बात करते हैं।
सभी साथियों को जय भीम, जिंदाबाद। मेरा नाम एडवोकेट नवीन गौतम है। मैं मानवाधिकार के मुद्दों पे काम करता हूँ, उनकी पैरवी करता हूँ और उनसे जुड़ी जो भी वकालत है उसको आगे ले जाने की हमारे युवा साथियों के साथ कोशिश करता हूँ। जैसा कभी मेरे पास सवाल आया है वो है कि जो बच्चे कई बार फ्रॉड, फर्जी एडवर्टीजमेंट्स, फर्जी विज्ञापनों के शिकार हो जाते हैं, और सिर्फ बच्चे नहीं उनके माँ बाप भी और व्यस्क लोग भी शिकार हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या हमारे पास रेमेडीज़ वगैरह बचती है। पहला तो हमारे दो अधिकारों को उल्लंघन होता है। पहला हमारा निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, और दूसरा एक कंज्यूमर अधिकार होता है, उपभोक्ताओं का अधिकार। कंज्यूमर राइट्स के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में भी जानकारी सबको मिलनी चाहिए। और कहीं ना कहीं कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता के अधिकार भी हमारे मानव अधिकार के हिस्सा होते हैं, क्योंकि हमारी जो भी अर्निंग होती है, जो भी हमारी कमाई होती है जिससे हम चीज़ें खरीदते हैं, उसी से जुड़ी होती है, तो वो भी मानव अधिकार के साथ जुड़े जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास दो रेमेडीज़ इसमें हैं। बेसिकली पहला आपका होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का है, लेकिन अभी कुछ पिछले कुछ वर्षों में यह इसमें संशोधन हुआ है। उसके तहत आप कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट कर सकते हैं, पिटीशन डाल सकते हैं। और इसी के साथ एक और हमारे पास कानून है जिसको मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 का कानून है। इसके तहत भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं जब कोई फर्जी एडवर्टीजमेंट हो, जहां पे बच्चों का किसी तरीके से शोषण हुआ हो या फिर उनसे पैसा मांगा गया हो, तो या फिर उन्होंने कहीं पैसा ऐसा दिया हो जिसमें बच्चे फंस गए हों। तो ये दो कानून ऐसे हैं जिनके तहत हम मदद कर सकते हैं। बाकी आपका आईटी एक्ट वगैरह आ जाता है, और जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड की बात करते हैं, तो उसमें भी कई बार उसमें रोल निकल के आता है। और जहां हम जानते हैं, जहां आपके निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, आपके कंज्यूमर राइट्स का उल्लंघन हुआ है, तो हमारे पास हमेशा एक रेमेडी बचती है इन कुछ कानूनों के तहत कंप्लेंट डालने की।
तो साथियों, उम्मीद है आप सभी को यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप सभी का इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद। साथियों, अगर आपके कुछ सवाल हैं इस पॉडकास्ट को लेकर, या आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं इस पॉडकास्ट को लेकर, या आप अगले पॉडकास्ट के लिए कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप सभी के फीडबैक, आप सभी के सवाल का इंतज़ार रहेगा। आप सभी से मिलते हैं जल्दी एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, जिंदाबाद।